पेज नंबर 95, 5.2.2 परिभाषाएं, डेफिनेशंस। सारोकिन कहता है कि क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व किसी विशेष समाज की सामाजिक अपेक्षाओं व सामाजिक मूल्यों का मूल रूप से अस्त व्यस्त हो जाना है। स्मेल्सर क्रांति की घटना को दो प्रकार से वर्णन करता है, अप्रत्यक्ष रूप से आधुनिकीकरण की समस्याओं के द्वारा तथा अधिक प्रत्यक्ष रूप से सामूहिक व्यवहार के द्वारा। उसके अनुसार आधुनिकीकरण सदा उपद्रव पैदा करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पुनर्गठन की गतिशीलता तीव्र सामाजिक परिवर्तन के साथ कदम नहीं मिला पाती। भय, बौखलाहट, दंगे तथा सामाजिक आंदोलन व क्रांतियां सामूहिक व्यवहार के रूप हैं। चॉमर्स जॉनसन क्रांति की परिभाषा सरकार या प्रजा या समाज में अर्थपूर्ण राजनीतिक हिंसा द्वारा लाए गए परिवर्तनों के रूप में करता है। अतः यह सामाजिक परिवर्तन का वह रूप है जिसकी विशेषताएं इसके लिए अपनाए गए साधन तथा इसके प्रभाव का क्षेत्र हैं। वे साधन राजनीतिक हिंसा हैं जिन्हें आकस्मिक कार्यों द्वारा दूसरों की अपेक्षाओं को तहस नहस करने के लिए जानबूझकर किए गए प्रयास के रूप में परिभाषित किया गया है। क्रांति समूची सामाजिक प्रणाली को अपने में समेट लेती है। यह अंतः सर्वांगी विवाद हिंसा का रूप है। कार्ल मार्क्स ने क्रांति का वर्णन सरकार में परिवर्तन या शासक वर्ग को हटाए जाने के रूप में किया है। वह क्रांति को इस प्रकार स्पष्ट करने का प्रयास करता है कि जब अधीनस्थ वर्ग, जिसका शासक वर्ग द्वारा शोषण किया जा रहा है, या महसूस करता है कि उनका शोषण किया जा रहा है तथा वे संगठित होकर शोषकों को सत्ता से हटा देते हैं, इस प्रकार क्रांति एक वर्गहीन समाज लाती है। इतिहासकारों, सामाजिक सिद्धांतवादियों तथा अन्य विद्वानों ने क्रांति की कई परिभाषाएं बताई हैं। डेल योडर ने विभिन्न विचारों को चार श्रेणियों में बांटा है। नंबर एक, क्रांति एक राजनीतिक घटना है जिसके सत्ता व सरकार में परिवर्तन होता है। नंबर दो, क्रांति आकस्मिक तथा हिंसक सामाजिक परिवर्तन है जो कई रूप लेती है। ये धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक व औद्योगिक रूप हैं। नंबर तीन, क्रांति समूची सामाजिक व्यवस्था का पूर्ण एवं कार्यात्मक परिवर्तन है जिसमें संस्कृति के सभी पहलू शामिल हैं। नंबर चार, क्रांति मूलभूत संस्थाओं में परिवर्तन है जिसके परिणाम स्वरूप अधिक महत्वपूर्ण सामाजिक मूल्यों के लिए सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन होता है।